capacidad. Ram Ram Dashrath Nandan
प्राणदास आपका स्वागत करते हैं इस साप्ताहिक श्री कृष्ण भावना मुक्त रेडियो शो में. नमस्कार, मैं श्री राधा गिरधारी जी से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन सुखी और आनंद में रखे. मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं श्री राधा गिरधारी मंदिर में जो 429 कोर्ट्स रिवा हेड हाईवे पर है, जिसे हाईवे 28 के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर श्री राधा गिरधारी की दैनिक पूजा सुबह 4:30 मंगल आरती के साथ शुरू होती है, जिसके बाद सुबह 7 दर्शन आरती और दोपहर 12:30 भोग आरती होती है. दोपहर 1 से 1 से शाम 4 तक दर्शन बंद रहते हैं. फिर शाम 7 संध्या आरती होती है और 9 शयन आरती के साथ मंदिर बंद हो जाता है. हर रविवार को विशेष पब्लिक प्रोग्राम 12:30 आरती के साथ शुरू होते हैं. आरती के बाद श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवत गीता पर आधारित श्री कृष्ण कथा होती है. फिर हमारे संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की गुरु पूजा होती है और 2:30 महाप्रसाद के साथ दिन का कार्यक्रम समाप्त होते हैं. कृपया अपने परिवार और दोस्तों के साथ आए और भगवान का दर्शन करें, शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करें तथा भागवत प्रसाद. और अब लीजिए, अब सुनिए पूज्य शुभ विलास जी से रामायण की कथा.
रामायण को एक संक्षिप्त रूप में देखने वाले हैं और इस तरीके से हम रामायण को देखने वाले हैं कि आप लोग सोचेंगे कि मुझे रामायण मालूम ही नहीं है. जो आज का कथा है मैं 3 भाग में डिवाइड करने वाला हूं. पहले भाग हम रामायण के कुछ पात्रों को लेंगे, कुछ कैरेक्टर्स को लेंगे और उन कैरेक्टर्स के नाम से हम क्या सीख सकते हैं वो समझेंगे. पहले तो सिर्फ रामायण के कैरेक्टर्स के नाम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. उसके बाद रामायण की मैं 1-2 कहानी लूंगा और उस कहानी के गहराई से तक जाएंगे और उस कहानी से हम क्या सीख सकते हो समझने की कोशिश करेंगे. तो मतलब इसी तरह रामायण की कोई भी कहानी ले लो उसमें उतना ही गहराई होगा. और तीसरा जो भाग है आज के कथा का, वो संपूर्ण रामायण को किस तरीके से समझना है, वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण लिखा हुआ है क्यों लिखा है और क्या उद्देश्य से लिखा है और पूरे रामायण से हम लोग क्या सीख सकते हैं वो हम समझेंगे. ठीक है, रामायण में बहुत सारे किरदार हैं और रामायण की खास बात यह है कि हर किरदार का एक महत्व है और उनके नाम के पीछे एक रहस्य है. जैसे रामायण का जो मेन किरदार राम है, राम मतलब क्या, राम मतलब जिनका नाम लेते ही मुस्कान आ जाएगा, अच्छा लगेगा, आपको आनंद आता है, वो है राम. तो हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको याद करते ही हमें अच्छा लगता है कि नहीं. तो हमारे जीवन में हम राम का महसूस तब करते हैं जब हम कुछ अच्छे लोगों को का अनुभव करते हैं. रामायण में और एक किरदार है रावण. रावण का मतलब क्या है, जो दूसरों को रुलाता है. और हमारे जीवन में भी ऐसे लोग हैं जिनको जो सामने आते ही हम लोग रोने लगते हैं. किसी के लिए बॉस है, किसी के लिए पत्नी है, किसी के लिए कह रहा हूँ सासू माँ है, जो बहुत सारे लोग हैं जो सामने आते ही रोने लगते हैं हम लोग, वो हमारे जीवन में रावण है. तो ऐसा नहीं कि राम रावण बहुत पहले के थे, अभी भी है, हमारे आजू बाजू में ही है ना. रामायण में एक किरदार है दशरथ महाराज. जो दशरथ का मतलब क्या है, रथ मतलब घोड़ा, चैरियट, रथ. दशरथ मतलब जिनका जो रथ है वो 10 दिशा में जा सकता है, उनका नाम दशरथ है. तो दशरथ महाराज का रथ सही में 10 दिशा में जा सकता था, उनका एक ऐसा वरदान था. लेकिन दशरथ का और एक मतलब है, और एक मतलब क्या है, दशरथ मतलब जिनके दस इंद्रियां उनके वश में है उनको भी दशरथ कहा जाता है। तो मतलब जिस व्यक्ति के दस इंद्रियां वश में है वो दशरथ हो गए। और दशरथ कहां रहते हैं, अयोध्या में रहते हैं। अयोध्या शब्द का मतलब, अयोध्या शब्द जो है युद्ध शब्द से आता है। युद्ध का मतलब क्या, झगड़ा। और अयुद्ध अयोध्या मतलब जहां पे कोई द्वंद्व नहीं है, कोई झगड़ा नहीं होता है। तो जिस व्यक्ति के दस इंद्रियां उसके वश में है और जिसका मन स्थिर है, अयोध्या जो है हमारे मन को रिप्रेजेंट प्रतीत करता है, और जिस व्यक्ति का मन स्थिर है, जिसके दस इंद्रियां काबू में है और जिस व्यक्ति का मन स्थिर है उसके जीवन में राम का जन्म होता है, उसके जीवन में भगवान का जन्म होता है। तो ये एक अंदरूनी तरीका है रामायण को जानने का। और रामायण में एक और किरदार है दशानन, रावण का और एक नाम है दशानन। तो दशरथ हो गया, अभी दशानन है। दशानन मतलब क्या, जिसके दस सर है ना। लेकिन दशानन का और एक मतलब है जिसके दस इंद्रियां उसके वश में नहीं है। दशरथ मतलब जिसकी दस इंद्रियां उसके वश में है, दशानन मतलब जिसकी दस इंद्रियां उसके वश में नहीं है। और वो रहता किधर है, लंका में। और ऐसा बताया जाता है लंका ऐसा जगह है जहां पे कोई रात को सोता नहीं है। आप अभी बोलेंगे पुणे में भी कौन सोता है, एक ही बात है ठीक है समझ जाएगा तो मतलब जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में नहीं है उसका पहला चीज क्या उड़ता है, पहला नींद उड़ता है उसका। तो रामायण के हर किरदार को आप देखेंगे तो उसका हमारे जीवन में डायरेक्ट कनेक्शन है। जैसे रामायण में और एक किरदार है जिनका नाम है वाली। वाली के पास एक वरदान था कि उसके सामने उसका जो भी शत्रु आता है उसका आधा शक्ति जो है खींच लेता है वाली। उसके पास एक शक्ति था, एक ज्वेल था। तो मतलब उसका, उसके सामने आ गए आप तो आपका आधा शक्ति खत्म, और वो दुगना शक्ति भी शक्तिशाली बन जाता है वाली, है ना। तो वाली हमारे जीवन में भी है। वाली कौन है हमारे जीवन में, टेम्पटेशंस, जो टेम्पटेशन जो नहीं, हाँ प्रलोभन, जो जो वस्तुएं हमें प्रलोभित करते हैं वो वाली है। जैसे किसी को डायबिटीज हो गया, उसके सामने गुलाब जामुन लेके आओ क्या होगा, उसका ना बोलने का शक्ति जो है एकदम का कम हो जाएगा और वो गुलाब जामुन दुगना शक्तिशाली बन जाता है, वो वाली है। तो हम सबके जीवन में कोई ना कोई वाली है, कोई ना कोई वस्तु है जो वाली का रूप लेके आता है ना। तो रामायण के हर किरदार को देखोगे इसी तरह हमारे जीवन में डायरेक्ट कनेक्शन है उसका। आप सब लोग अपना अपना मोबाइल फोन प्लीज साइलेंट मोड में डाल दीजिए, हम लोग अलग दुनिया में है तो यहां पे मोबाइल टोन बजेगा तो सबका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना। तो रामायण के हर किरदार को आप देखेंगे इसी तरह, तो हर किरदार हमारे जीवन में आज भी है। अभी हम लोग रामायण की एक कहानी लेंगे और एक कहानी से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा एक सबसे फेवरेट कहानी है वो मैं बताऊंगा रामायण का, और ये बहुत सुंदर कहानी है। जब राम लक्ष्मण और सीता वनवास में थे तब एक दिन सुवर्ण मृग आया उनके जीवन में, है ना। तो जैसे ही सुवर्ण मृग आया सीता को लगा मुझे ये चाहिए। तो सीता ने राम को कहा आप मुझे ये सुवर्ण मृग लेके आइए। तो राम कहते हैं लक्ष्मण को आप सीता का देखभाल करो, मैं जाके सुवर्ण मृग लेके आता हूं। और राम चले जाते हैं। सुवर्ण मृग को रामायण में वाल्मीकि मुनि क्या कहते हैं मालूम है, उसको अभिराम कहते हैं। अभिराम, अभिराम का मतलब क्या, जो राम नहीं है। तो जैसे ही सुवर्ण मृग आपके जीवन में आ जाता है राम चले जाते हैं आपके जीवन से। तो सीता ने कहा मुझे सुवर्ण मृग चाहिए, तो राम चले गए। तो राम जब गए मृग के पीछे एक समय के बाद उनको पता चल गया कि ये सुवर्ण मृग नहीं है, ये राक्षस है। तो राम ने उसको मार दिया। जैसे ही वो तीर जो है मरीज को लग गया तो वो बहुत जोर से उसने चिल्लाया, राम के आवाज में उसने सीता और लक्ष्मण का नाम लिया और वो मर गया। यहां पे सीता और लक्ष्मण प्रतीक्षा कर रहे हैं राम के लिए। सीता लक्ष्मण को आवाज सुनाई दिया राम का, क्या बोलते हुए? सीता और लक्ष्मण को बुलाते हुए, पुकारते हुए। तो सीता को लगा कि राम जो है मुश्किल में है, तो सीता ने लक्ष्मण को कहा जाके राम की मदद करो। लक्ष्मण हंसने लगे, क्यों? मतलब जब जीवात्मा संकेत प्रॉब्लम में होता है, संकट में होता है, क्या करता है? ए भगवान चिल्लाता है ना। कभी ऐसा देखा क्या भगवान प्रॉब्लम में है और बोल रहा है ए जीवात्मा मुझे बचाओ है? मतलब कभी होता है ऐसा? तो लक्ष्मण सोचने लगे यार एक संभव भी कैसा है कि राम मुझे बुला रहे और सीता को बुला रहे, मतलब पॉसिबल भी कैसा है? क्योंकि लक्ष्मण जो है गुरु है, तो गुरु को ज्ञान होता है ना। तो हंसने लगे, तो सीता सोच रही है अरे राम मुश्किल में है और ये हंस क्यों रहे। तो सीता को और गुस्सा आ गया। देखिए लक्ष्मण और सीता के बीच में एक अंतर क्या था, सीता जो थी राम मुश्किल में है ये सोच के वो बहुत कंसर्न्ड थी, उसको बहुत व्याकुलता या बहुत डर लग रहा था, चिंता लग रही थी कि वो राम को क्या हो गया है। और लक्ष्मण एकदम कॉन्फिडेंट थे, उनको मालूम था राम को कुछ होने वाला नहीं है। तो मतलब दो लोग एक ही चीज को देख रहे हैं लेकिन अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, है ना। तो जब सीता ने लक्ष्मण को कहा जाओ राम को बचाओ, तो लक्ष्मण कहने लगे राम ने मुझे कहा यहां पे रहना है, मैं किधर नहीं जाने वाला हूं। तो सीता को बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में सीता ने कुछ ऐसे शब्द का प्रमाण किया कि लक्ष्मण के हृदय को बहुत ठेस पहुंच गया। ये जो कहानी मैं बता रहा हूं ये उनके वनवास की 13वें साल की कहानी है। तो 13 साल लक्ष्मण इनके साथ रहा है जंगलों में, 13 साल लक्ष्मण ने राम सीता की सेवा की है और 13 साल जो है लक्ष्मण अपने पत्नी को छोड़ दिया, सुख सुविधाओं को छोड़ दिया, धन संपत्ति को छोड़ दिया, अयोध्या नगरी को छोड़ दिया, सब कुछ त्याग कर दिया उसने 13 साल अपने यौवन का, और इन दोनों की सेवा में लगा हुआ है। और ये 13 साल में लक्ष्मण एक रात भी सोया नहीं। जब मैं बोल रहा हूं कि एक रात भी सोया नहीं, ऐसे नहीं कि दिन भर सो रहा था। आजकल लोग कॉल सेंटर जॉब करते हैं ना, रात भर जागते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं कि दिन भर सो रहे थे लक्ष्मण, दिन भर सेवा कर रहे थे और रात में वो रक्षण कर रहे थे सीताराम का। तो ये 13 साल के बाद सीता ये बोल रही है लक्ष्मण को, कह रही है मुझे मालूम है आप क्यों नहीं गए राम को बचाने के लिए, आप क्यों नहीं जा रहे हो, क्योंकि आप ये समय का प्रतीक्षा कर रहे हो कि राम मुझसे दूर जाए ताकि आप मेरा संभोग कर सको। तब सोचिए मतलब 13 साल इतना समय देने के बाद सीता जो है लक्ष्मण के चरित्र पर वो लालचन लगा रही है, डाउट कर रही है। तो लक्ष्मण को बहुत दर्द हुआ, बहुत दुख हुआ। लक्ष्मण ने सीता को कहा मैं जा रहा हूं यहां से, लेकिन मैं ये आश्वासन दे सकता हूं कि जब मैं वापस आऊंगा आप यहां पे नहीं रहोगे, बोल के चला गया लक्ष्मण, कुछ कहा नहीं, ऐसे चले गए। तो जब लक्ष्मण राम के पास पहुंचे, राम ने लक्ष्मण को देखा जंगल में, राम उनको पूछ रहे अरे तुम यहां पे क्या कर रहे हो, मैंने तुमको कहा सीता का रक्षा करो, तुम यहां छोड़ के यहां पे क्यों आ गए। दोनों वापस आए, सीता गायब। राम लक्ष्मण को झांपने लगे, बहुत ज्यादा डांटने लगे, बोलने लगे तुमको एक ही काम दिया वो भी नहीं कर सकते हो, तुम कुछ काम के नहीं हो। तो आप सोचो आप दो लोगों के लिए आपने अपना जीवन दिया, 13 साल दिया, लिटरली सब कुछ छोड़ के आ गए, और एक आपके चरित्र को डाउट करता है और एक आपके कॉम्पिटेंस को डाउट करता है, तो आप वहां पे टिकोगे क्या? कोई और रहेगा लक्ष्मण की जगह पे, वो बोलेगा आप दोनों को गोली मारो, मैं जा रहा हूं अयोध्या वापस, अपना बोरिया बस्ता समेट के वापस चले जाते थे, है कि नहीं। तो लेकिन लक्ष्मण वहां पे टिके कैसे रहे, और इतना ही नहीं, लक्ष्मण जो रामायण में है वो एंग्री यंग मैन है, गुस्सा उनके नाक पे चढ़ा हुआ है ना, कभी भी गुस्सा आ जाता है उनको। और इतने गुस्से वाले व्यक्ति ऐसे मौके पे, ऐसे स्तर पे, वो कैसे उनको गुस्सा नहीं आया? अगर ये मैं जो अभी बोलने वाला हूं आप ये समझ गए तो आप आपके जीवन के बहुत सारे समस्याओं को समाधान कर सकते हो। 30 साल का संबंध जो है 30 सेकंड में टूट सकता है, अगर आप ये जो सीक्रेट में जो बताने वाला हूं वो जानोगे नहीं तो। बहुत सारे लोगों की बीच में डिवोर्स हो जाते हैं आजकल, बहुत लोग अपने कंपनी को छोड़ देते हैं, बॉस को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि वो 30 सेकंड में ही बहुत कुछ हो जाता है ना, वो 30 सेकंड में जो शब्द बोल दिया आपके मुंह से खत्म, संबंध टूट सकता है। तो लक्ष्मण ने क्या किया ये स्थिति में, ये जानना जरूरी है। और ये जो है रामायण से हम सीख सकते हैं। जब सीता ने वो वाक्य कहे उनके उनके मुख से, लक्ष्मण ने क्या किया? लक्ष्मण ने पॉज बटन दबाया। जैसे आप कोई एक्शन मूवी देख रहे हो और बीच में घंटी बजता है या फोन बजता है, क्या करते हैं? पॉज बटन दबाते हैं ना, तो मतलब वहीं पे रुको मैं आता हूं। तो लक्ष्मण ने पॉज बटन दबाया और अपने आप को एक सवाल पूछा। लक्ष्मण ने क्या सवाल पूछा? सीता ये जो कह रही है सही में ये मानती है क्या? जो बोल रही है ये शब्द जो है वो सही में ये शब्द को मान रही है क्या? तो लक्ष्मण की हृदय से आवाज आया, नहीं। सीता को जो राम के प्रति जो कंसर्न है, उनके प्रति जो चिंता है, वो चिंता जो है ये शब्दों के रूप में आ रहा है बाहर। सीता सही में ऐसा सोच नहीं रही है, बस सीता को चिंता है राम के बारे में, वो चिंता जो है इन शब्दों का रूप लेके बाहर आ रही है। और जब राम ने उनको झापा, राम ने उनको अनाप शनाप कह दिया, तो फिर लक्ष्मण ने पॉज बटन दबाया और अपने आप को एक सवाल पूछा, ये राम सही में ये बोल रहे हैं क्या? उनके हृदय से जवाब आया, नहीं। राम को जो सीता के प्रति चिंता है, वो चिंता जो है ये शब्द के रूप में आ रही है बाहर। अभी मैं जब ये कहानी कहता हूं लोगों को तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं, प्रभु जी ऐसा स्थिति में जब हम आते हैं ना, कोई हमें बहुत बुरी तरह गाली देता है, बहुत बुरी तरह कुछ बोल देता है, तो पॉज बटन छोड़ो रिमोट कंट्रोल की तरह मालूम नहीं पड़ता है ना? मतलब कोई हमको झाप दिया बस तलवार लेके मारो, कैसे ही हो जाता है ना। तो लक्ष्मण इतने गुस्से वाले व्यक्ति है, ये कैसे दबा पाया पॉज बटन को? और वो भी ऐसे समय में जब दो लोग जिनके लिए उन्होंने सब कुछ दिया, दोनों जो उनको इंसल्ट कर रहे। एक विचार आया लक्ष्मण के मन में और एक विचार के कारण लक्ष्मण पॉज बटन दबा पाए, लक्ष्मण जो है शांत रह पाए। क्या था वो विचार? वो एक विचार था कृतज्ञता का। तो जब सीता ने वो शब्द कहे लक्ष्मण को, लक्ष्मण के मन में एक ही विचार आया। क्या सोच रहे थे वो? सीता ने 25 साल इस संबंध में उन्होंने बहुत प्रेम दिया है, सीता ने मुझे 25 साल इतना प्रेम दिया है, और एक गड़बड़ गया, एक बार कुछ गलत बोल दिया, तो ये एक गलती के लिए मैं 25 साल का जो प्रेम है क्या मैं उसको भूल जाऊं? ये एक सोच से वो अपने आप को रोक पाए। और जब राम ने कहा तो राम ने वो शब्द कह दिए तो उनको बहुत दर्द हो रहा था, तो वापस वही एक सोच था उनके मन में, 40 साल राम ने इस संबंध में बहुत प्रेम दिया है मुझे, और 40 साल के बाद एक गड़बड़ कर रहे हैं, एक बार उन्होंने गलती कर दिया, तो ये 40 साल का जो प्रेम है उसको मैं भूल जाऊंगा क्या ये गलती के लिए? क्योंकि वो एक सोच था कृतज्ञता का, लक्ष्मण अपने आप को रोक पाए। हमारे संबंधों में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं ना वही हमें सबसे ज्यादा गाली भी देते हैं। है कि नहीं, मतलब जो स्ट्रेंजर्स है रोड में रास्ते में जाने वाले वो हमको गाली नहीं देते, जो हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वही हमको सबसे ज्यादा गाली देते। तो उस समय हमको सिर्फ इतना ही एक क्षण के लिए रोकना चाहिए अपने आप को। तो ये गाली तो दे रहे हैं लेकिन इतने साल प्रेम भी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं वो एक गाली को याद रखते हैं, इतने साल का प्रेम को भूल जाते है कि नहीं, मोस्टली ऐसे हो जाता है। लेकिन लक्ष्मण देखिए, एक क्षण उसको मतलब उनको गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन ये कृतज्ञता का जो बात उनके मन में था उसकी वजह से वो अपने गुस्से को थोड़ा शांत रख पाए और काबू में रख पाए। तब देखिए, ये रामायण की एक छोटी सी कहानी है, ये कहानी तो हमने बहुत बार सुनी है लेकिन इस कहानी को हम इस तरीके से देखेंगे तो ये कहानी में कितना मर्म है, कितना तत्व है। इस तरीके से रामायण की हर कहानी में इतना ही शक्ति है और इतना ही तत्व होता है। हम अभी संपूर्ण रामायण को लेंगे और संपूर्ण रामायण को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रामायण जो है तीन शहरों में होता है, ऊपर अयोध्या, नीचे लंका और बीच में किष्किंधा। तीन शहर है जो प्रमुख शहर है रामायण के, अयोध्या, किष्किंधा, लंका। अयोध्या का जो शहर है उसको संस्कृति कहते हैं क्योंकि अयोध्या के लोग जो है बहुत ही सुसंस्कृत लोग हैं, बहुत चरित्रवान लोग हैं। अयोध्या में हर व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही शुद्ध जीवन जीता है। कम्बमणि रामायण में कहते हैं कि अयोध्या ऐसा जगह है जहां पे कोई भी दुकान में ताला नहीं बिकता और कोई भी व्यक्ति दान नहीं देता। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसा शहर है, तो अंडर डेवलप शहर है, मतलब हमारे हर दुकान में ताला बिकता है ना, और हर व्यक्ति दान देता है, तो ऐसा कैसा अयोध्या, बैकवर्ड है एकदम। कम्बमणि एक्चुअली उसका गुणगान कर रहे हैं अयोध्या का, क्यों, क्योंकि कोई भी अपना घर जो है उसको ताला नहीं मारता, ताला क्यों बिकेगा। राजा को जो खजाना है वो भी ताला नहीं मारते क्योंकि वहां पे कोई चोरी करता ही नहीं है, तो इसलिए अयोध्या में कोई भी दुकान में ताला नहीं बिकता है। और कोई दान क्यों नहीं देता, भिखारी नहीं है, भिखारी नहीं है तो दान किसको देगा। अभी आज भी आप गोवा जाओगे, भिखारी नहीं है गोवा में। हमारा प्रोग्राम के बाद कभी कोई प्रसाद बच जाता है, क्या करेंगे प्रसाद का, कोई देने के लिए दे ही लिए, दूर दूर तक जाएंगे तो भिखारी मिलता ही नहीं है। अब सोचो आज की तारीख में गोवा ऐसा है तो अयोध्या कैसा होगा, तो इसलिए वहां पे दान देने वाला कोई नहीं है। तो अयोध्या एक ऐसा शहर है जहां पे सब लोग जो है चरित्रवान लोग हैं। उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट लंका है। तो अयोध्या जो है संस्कृति है, लंका जो है विकृति है। संस्कृति का मतलब कल्चर, विकृति का मतलब वल्चर। सब एक दूसरे को नोचते। लंका में एक भी जो चीज है वो रावण का नहीं है, सब चोरी का माल है। सब इधर से उठाया, उधर से उठाया, पूरा लंका ही चोरी है, चोरी का माल है। कुबेर का प्रॉपर्टी था, उधर आके बैठ गया रावण, है ना। तो लंका में लोग जो है उनको चरित्र क्या है मालूम ही नहीं है, बस लूटना मालूम है, जो भी अच्छा लगे उठा लो, खत्म। और किष्किंधा जो है बीच में है उसको प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति का मतलब है नेचर, कल्चर, वल्चर, नेचर। प्रकृति का मतलब क्या है, जैसे आप समंदर के तट पे हो, समंदर के तट पे आप खड़े हो तो पानी आ रहा है, पानी जा रहा है ना, तो आप क्या बोल सकते हो, आप जमीन पे हो कि पानी में हो, बोल नहीं सकते, कभी पानी में कभी जमीन पे, है ना। तो किष्किंधा के लोग ऐसे हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। तो आप कब उनको देख रहे हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे जैसे सुबह सुबह जाके देखो माला के साथ बैठे हैं प्रभु जी, आ क्या लग रहा है, वैकुंठवासी है। वही प्रभु जी को शाम को देखो समझ में आता है ये तो बड़ा राक्षस है बाबा, मतलब धीरे धीरे दिन में जैसे ढलता है राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ता रहता है ना, तो रात तक पूरा राक्षस बन जाते। तो किष्किंधा में ऐसे लोग है, तो किष्किंधा मतलब सब बीच वाले हैं बेसिकली, कभी उधर कभी उधर। अयोध्या में जो है सबके सब लोग कृतज्ञ है। कृतज्ञ मतलब क्या है, किसी ने उनके लिए कुछ किया तो जीवन भर याद रखेंगे, कभी भी भूलते नहीं है। अयोध्या में एक बार जब राज अभिषेक हो रहा था राम और सीता का, तो राज अभिषेक के समय वहां पे त्योहार चल रहा था, बड़ा धूमधाम का त्योहार चल रहा था। तो त्योहार के समय सिंहासन पे राम और सीता बैठे हुए हैं, तो सीता रोने लगी। तो राम को समझ में आता है कि रो क्यों रही है, इतना उत्साह उत्सव चल रहा है और उल्लास का माहौल है, तो सीता रो क्यों रही है। तो राम सीता को पूछते हैं आप रो क्यों रहे हो, तो सीता कहती है अभी त्योहार में किसी ने रंग फेंक दिया, तो अलग अलग रंग फेंकते उसमें से एक किसी ने लाल रंग फेंक दिया आसमान में। तब जब सीता ने लाल रंग को आसमान में देखा तो सीता को तुरंत जटायु का याद आया। जब जटायु को के पर रावण ने काट दिए तो वो जो जब जटायु नीचे गिर रहे थे उनका खून जो है ऐसे आसमान में बिखर गया, तो लाल खून जो है, तो सीता को उस समय वो लाल रंग को देख के जटायु को बलिदान याद आया। मतलब सोचो ये जो है सीता का जीवन का सबसे टॉप मोस्ट सक्सेस है ना, मतलब ये दिन जो है सबसे बड़ा दिन है सीता के जीवन के लिए। लेकिन वो किसको याद कर रही है, जिसने उसके लिए थोड़ा सा बलिदान दिया। मतलब ऐसा भी नहीं कि जटायु सक्सेसफुल हो गए, जटायु हार गए उस दिन है ना, फिर भी सीता दो है जो है जटायु का जो बलिदान है वो याद रख के कृतज्ञता व्यक्त कर रही है। ये अयोध्या के लोग हैं कृतज्ञ।